अजीज साथियों, बहनों और भाइयों, हरदिल अजीज और आपके पसंदीदा प्रोग्राम अंकल कासिम के साथ आपकी बहन कैथरीन जावेद हाजिर है और आपको सलाम कहती है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस पर ये इल्ज़ाम कि ये बदल चुकी है, इसमें तहरीफ हो चुकी है और इसको बिगाड़ कर रख दिया गया है, कोई नई बात नहीं है। ये इल्ज़ाम तो बहुत पुराना है, लेकिन दुख और अफसोस की बात तो ये है कि आज तक किसी ने इस इल्ज़ाम को सच्चा साबित नहीं किया। उसूल की बात ये होती है कि इल्ज़ाम को सच्चा साबित करना हमेशा से इल्ज़ाम लगाने वाले की इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मेहरबान ये जिम्मेदारी निभाने की कोशिश नहीं करते। इस इल्ज़ाम को कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो चुकी है, साबित करना तो बहुत दूर की बात है, वो ये तय नहीं कर पाते कि ये तब्दील कब हुई, इसमें तहरीफ किसने की है या इसको बिगाड़ने वाला कौन है। अजीजो, बाइबल मुकद्दस के दो अहदनामे हैं, एक पुराना अहदनामा है और इसमें हजरत मूसा की शरीयत और तौरेत है, और इसमें हजरत दाऊद के जबूरों की किताब है और सहाइफ़े अंबिया भी इसी में शामिल हैं, और इन तमाम मुकद्दस और इल्हामी किताबों को बनी इसराइल और मसीही दोनों मानते हैं। लिहाजा पुराने अहदनामे में तो तहरीफ और बिगाड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये किताबें उन दो मजाहिब के मानने वालों की मुकद्दस किताबें हैं जिनकी रोज़े अव्वल से आपस में कभी नहीं बनी। तारीख शाहिद है कि बनी इसराइल सिर्फ मसीहियों से नहीं बल्कि मसीहा से भी नफरत करते हैं। उन्होंने एक दिन के लिए भी यसु अल मसीह को कबूल नहीं किया, बल्कि उनको मसलूब करने में अहम तरीन रोल अदा किया है, और नया अहदनामा यानी इंजील मुकद्दस तो शुरू दिन से उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकती है और वो किसी न किसी सूरत में उनके पास महफूज है, और भला ये कैसे मुमकिन है कि बाद में मसीही उसको बदल दें और बनी इसराइल खामोशी का लंबा रोजा रखे बैठे रहें और कभी ये जाहिर ना करें कि मसीहों ने फलां जगह पर फलां तब्दीली कर दी है और असल सबूत ये है। अजीजो, ये नामुमकिन है कि कोई बशर, कोई कौम या किसी मजहब के मानने वाले सरकश और गुमराह होकर खुदाए कादरे मुतलिक और दिलों और गुर्दों के जानने वाले के देखते हुए उसके कलाम को बदल दें और वो उनको बरकत, इकबाल मंदी और सरफराजी देने पर मजबूर रहे और चुप सादे बैठा रहे, ये नामुमकिन है। खुदा रोजे अव्वल से अपने सच्चे और जिंदा कलाम की गैरत रखता है, वो अपने कलाम को सब नामों से अफजल रखता है, और उसके कलाम को बिगाड़ने वाले उसके कहर गजब से बच नहीं सकते। अजीजो, आइए कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को सुनने, समझने और सीखने के लिए अपने दिलों और जहनों को तैयार करने के लिए सुनते हैं ये रूहानी गीत।
तेरे हुजूर देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं तेरी हुजूरी झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, आता हूं तेरे हुजूर देखता तेरा जला। Thank you. बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला। चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे तेरे हुजूर, देखता तेरा चला।
अभी आपने एक खूबसूरत गीत सुना और अब इंतहाई एहतराम के साथ अंकल कासिम और उनके साथियों को दावत देते हैं और उनसे खुदा के कलाम की सच्ची बातें सुनते हैं।
मैं तुम सब से एक सवाल करना चाहता हूँ।
अंकल कासिम, अगर तो यह सवाल हमारे खानदान के रवैये के मुतल्लिक है जो वो हमसे रखते हैं, तो फिर कुछ मत पूछिए।
नहीं भाई, मेरा सवाल तो बाइबल के बदल जाने के मुतल्लिक है।
अच्छा, तो पूछें, क्या सवाल है आपका?
دنیا میں بائبل مقدس کی کتنی تعداد پائی جاتی ہے؟
انکل قاسم، کیا آپ اس سوال کے پوچھنے میں سنجیدہ ہیں؟
دیکھو جاوید، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے وہ بڑی سنجیدگی سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔
ہاں تو بتائیے، دنیا میں کتنی تعداد ہوگی بائبل مقدس کی؟
شاید ان کی تعداد لاکھوں میں ہو،
شاید کروڑوں میں، اور اس سے بھی زیادہ ہوں۔
کیا ان میں سے کوئی ایسی بائبل ملی ہے جو تحریر میں دوسری بائبل سے مختلف ہو؟
ایک بائبل تو بدل نہیں سکتی، ظاہر ہے دنیا میں جتنی بائبل ہوں گی وہ تمام کو ہی بدلا گیا ہوگا۔
اچھا، تو جس نے بھی بائبل کو بدلا اس نے دنیا کی تمام بائبل کو بدل ڈالا؟
دیکھو، جس نے بھی اسے بدلا بائبل کی ایک کاپی کو بدلا، پھر اسے چھپوا کر تمام دنیا میں بھیج دیا۔
اچھا، تو کسی نے ایک بائبل کو بدلا اور پھر اسے چھپوایا۔ جاوید، تمہاری بات سے لگتا ہے کہ ایک بائبل تو بدل گئی لیکن دوسری کاپی بائبل کی تبدیل شدہ نہیں۔
سمر، آپ اس رائے کے متعلق کیا خیال کرتی ہیں؟
انکل، میں سوچتی ہوں کہ اگر کچھ بائبل بدل چکی ہے تو اس کا مصنف خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ایک بائبل دوسری بائبل سے مختلف ہے تو مصنف کو ضرور بات کرنی چاہیے جس کے پاس اصل بائبل پائی جاتی ہے۔
ہاں، یہ بات درست ہے، جو بائبل بدل چکی ہے اس کا مصنف کیوں خاموش ہے؟
ہاں، یہ بات وزن رکھتی ہے۔
اچھا، اگر بائبل بدل چکی ہے تو دنیا میں جتنی بائبلز ہیں وہ تمام کی تمام بدل گئی ہیں؟
لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے زمانے میں یہ تبدیل ہوئی ہے، یہ تو بہت برسوں پہلے تبدیل ہو چکی ہے۔
اچھا، تو جب بائبل کو بدلا تو کیا صرف ایک ہی کو بدلا اور اس کے بعد اسے چھپوا کر تمام دنیا میں پہنچایا؟
کیا ایک کاپی کو بدلا؟ بائبل کی صرف ایک کاپی کب تھی؟
جس وقت اسے تبدیل کیا گیا ہوگا۔
مریم نے سلسلے میں کافی تحقیق کی ہے اور بڑے ٹھوس دلائل کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کوئی بائبل کو بدل نہیں سکتا اور نہ ہی وہ بدلی گئی ہے۔
اگر بائبل کو اس وقت تبدیل کیا گیا ہے جب صرف ایک بائبل کی کاپی کا وجود تھا، تو مصنف نے اسے تحریر کر کے چھپا دیا اور تمام دنیا میں یہ بائبل تقسیم ہو گئی۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریر کرنے والے نے اسے خود ہی تبدیل کر دیا ہو۔
یہ ممکن نہیں لگتا کہ تحریر کرنے والا زندہ ہو اور اسے کوئی تبدیل کر دے۔
یہ ناممکن بات ہے کہ کسی تحریر کرنے والے کی تحریر کو بدل دیا جائے اور وہ زندہ ہو اور خاموش رہے، یا وہ نسل زندہ ہو جس کے پاس بائبل کی اصل کاپی ہے اور وہ خاموش رہے۔
اچھا، تو بائبل کو کچھ جنریشنز کے گزر جانے کے بعد تبدیل کیا گیا ہے؟
پہلی جنریشن میں ہی بائبل کافی تعداد میں پھیل گئی تھی۔
ہاں، وہ پہلی جنریشن میں ہی کافی تعداد میں پھیل گئی اور بے شک لوگ شوق سے اسے لیتے تھے۔
تین یا چار جنریشنز گزر جانے کے بعد بائبل کی تعداد کیا ہوگی جو دور دراز ملکوں میں پھیل گئی؟ شاید وہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہو، اور یہ بات حقیقت ہے۔
اگر ہم توریت کی بات کریں تو وہ مسیح خداوند سے صدیوں پہلے یہودیوں کے پاس موجود تھی، اور اگر زبور کے متعلق بات کریں تو وہ بھی خداوند مسیح سے پہلے عبادات کے لیے استعمال ہوتے، اور اگر انجیل کی بات کریں تو وہ بھی پہلی صدی میں کوئی 2000 سال پہلے موجود تھی۔
ان تمام باتوں سے ہمیں کیا آگاہی ہوتی ہے؟
بائبل تمام دنیا کے ممالک میں پھیل گئی تھی۔
یہ ٹھیک ہے سمر، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بائبل دنیا کے بہت سے ممالک میں پہنچ چکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس شخص نے تمام دنیا سے بائبل کو اکٹھا کیا اور پھر اسے تبدیل کیا؟
اور بائبل کی قدیم کتاب کو بھی؟
ہاں، انہوں نے قدیم بائبل کی کاپی میں تبدیلی کی اور اس کے متن کو تبدیل کر کے دنیا میں بھیج دیا۔
اس بات میں سچائی نہیں پائی جاتی،
یہ ناممکن سی بات لگتی ہے۔
میرا خیال ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا۔
بائبل کے علاوہ بہت سی آیات کو مختلف کتابوں میں کوٹ کیا گیا،
کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں پوری بائبل کو کوٹ کیا ہے؟
میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہی ہوں جس میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بہت سی کتابوں میں بائبل کے آیات کی کوٹیشن دیکھی ہیں۔
کیا تمام بائبل کی آیات کو کوٹ کیا گیا ہے؟
ہاں، تقریباً تمام ہی آیات کو۔
اچھا، تو جنہوں نے بائبل کو بدلا ہے انہیں ان کتابوں کو بھی اکٹھا کر کے بدلنا پڑا،
اور یہ بات ناممکن نظر آتی ہے۔
اچھا، آپ کوئی اور رائے دیں کہ کس نے بائبل کو تبدیل کیا ہے اور گناہ کا مرتکب ہوا؟
ہاں، یہ وہی انسان ہو سکتا ہے جس کو کچھ فائدہ ہو۔
لگتا ہے یہودیوں نے یا مسیحوں نے ایسا کیا ہے۔
वो क्यों?
हाँ, अपने फायदे के लिए ये सब किया है, ताकि जो कुछ अच्छा लगे वो लिख दे और जो बात पसंद ना आए उसे वहां से निकाल दे।
जैसे यहूदी, क्योंकि वो खुदा यीशु पर ईमान नहीं लाए और ना ही वो ये मानते हैं कि वो खुदा की तरफ से भेजा गया है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो फिर उन्हें अपनी किताब में से हर बात जो खुदा यीशु से मुतालिक है निकाल देनी चाहिए।
उन्हें यह भी करना चाहिए कि वो तमाम नबूवत की बातें और खुदावन मसीह के तमाम मोजज़ात जो उनकी किताब में लिखे हैं वो भी वहां से निकाल दें।
क्या उन्होंने बाइबल को तब्दील किया है?
बाइबल, तौरात, जबूर और अंजील, ये सब कुछ हमारे पास है। इसमें नबूवत की वो तमाम बातों का जिक्र है जो खुदावन मसीह के लिए हैं और जो कुछ उन्होंने खुद अपने मुतल्लिक कहा।
अगर यहूदियों ने ऐसा किया है तो मसीही खामोश क्यों हैं? वो अपनी किताब के दिफा में क्यों नहीं बोलते?
शायद वो मसीही ही हों जिन्होंने अपनी किताब को बदल दिया है।
वो सब जो बाइबल के बदल जाने की बात करते हैं वो मसीहों को ही मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं।
क्या वाकई उन्होंने ये काम किया है?
अगर मसीहियों ने उसे बदल दिया होता तो तुम तो यहूदियों को जानते हो, क्या वो अब तक खामोश रहते?
फिर किसने ये काम किया है?
भई तुम खुद ही जवाब दो।
उनके मुतल्लिक आप लोगों का क्या ख्याल है जो बुतों को मानते हैं?
उनके मुतल्लिक तो मुझे ख्याल ही नहीं आया।
अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जो कुछ बाइबल में बुतों के मुतल्लिक लिखा है उन्होंने उसे क्यों नहीं उसमें से निकाल डाला?
नहीं, बाइबल नहीं बदली, बल्कि ये झूठा इल्जाम है।
जैसे कि आप कहते हैं कि बाइबल नहीं बदली, तो उसकी वो कदीम कापी कहाँ है?
हाँ, उनका वजूद है और उसकी हजारों तहरीरें मौजूद हैं।
हजारों में तादाद है क्या?
9,000 पुराने अहदनामे की और 5,000 नए अहदनामे की मुकम्मल तहरीर, जो कि 13,000 पर मुश्तमिल है।
ये तमाम एक मशहूर अजायब खाने में मौजूद हैं।
ये तमाम एक जैसी हैं या इनमें कुछ फर्क पाया जाता है? क्या सब उनसे मुत्तफिक हैं?
अगर वो उन पर मुत्तफिक नहीं तो मुतजाद राय भी नहीं रखते।
और क्या ये सब उस बाइबल पर जो हमारे पास है इत्तफाके राय रखते हैं?
हाँ, वो सब मुत्तफिक हैं कि जो बाइबल हमारे पास है वो वही पुरानी और असल बाइबल है।
बाइबल के वो पुराने और कदीम और आग कहाँ पाए जाते हैं?
अंकल कासिम कहते हैं कि वो सब एक मशहूर अजायब खाने में मौजूद हैं।
मैनचेस्टर के एक अजायब घर में नए अहदनामे की वो कदीम पुरानी तहरीर जो कि हाथ की लिखी हुई है अब भी वहां मौजूद है। बहुत से जिन्होंने उन्हें अपनी आंखों से देखा या उनकी औलाद ने देखा उनमें से कुछ लोग जिंदा हैं और वो इस बात की गवाही देते हैं कि जो बाइबल आज हमारे हाथ में है यही वो असली बाइबल है।
और इसी तरह दुनिया के और अजायब घरों में भी ये तहरीर मौजूद है।
क्या सारी दुनिया के अजायब घरों में ये तहरीर मौजूद है?
ये सब कुछ दुनिया के लोगों के सामने है।
तो फिर हमसे ये क्यों कहा जाता है कि बाइबल बदल चुकी है,
जबकि कदीम हाथ की लिखी हुई तहरीर मौजूद है,
जबकि वो उनकी सच्चाई का तकाबली जायजा भी ले चुके हैं?
ये तमाम बातें मेरी समझ से बाहर हैं।
और उनके लिए जो झूठी बातें कहें किसी काम को खराब करना मुश्किल नहीं।
किस बात को बिगाड़ना? क्या मसीही ईमान को?
उन जवानों के जहन में फतूर डालना ताकि वो सच्चाई की तरफ रागिब ना हो।
सन 1947 में हमने एक पुरानी तहरीर दरियाफ्त की जो कि 11 पुराने मसवदे और उसके 40,000 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। उस दरियाफ्त को द डिस्कवरी ऑफ कुमरान कहते हैं, जो बहरे मुर्दार के करीब है।
ये मशरिक वुस्ता में है।
इस दरियाफ्त को मोहम्मद आलम अरबी ने उस वक्त किया जब वो अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढ रहा था। उन्होंने एक पत्थर फेंका जो गार में जा लगा और वहां से एक आवाज जोर की आई। वो उस गार में गए, उन्हें एक मिट्टी का जार वहां पड़ा मिला जिस पर चमड़ा चढ़ा हुआ था और उस चमड़े पर कुछ कदीम तहरीर थी।
उस जार का क्या किया होगा?
वो बेच दिया गया होगा, लेकिन साहिब इल्म लोगों ने उसे हाथों हाथ लेकर महफूज कर लिया होगा और उस पुरानी तहरीर के साथ उसे मिलाकर देखा होगा।
क्या वो तमाम साहिब इल्म लोग इस तहरीर पर मुत्तफिक हैं कि वो कदीम तहरीर है?
बेशक, उसे 1900 सालों तक बड़ी महफूज जगह पर रखा गया।
वो तहरीर 100 साल कबल अस मसीह है।
मुहाफिज या निगेबान वो तमाम पुरानी तहरीर हासिल ना कर सके, लेकिन दरियाफ्त करने वाले लोगों ने साहिब इल्म को मजबूर किया कि वो उनकी तलाश करें। جب تک انہوں نے قدیم بائبل کو لینن کے کپڑے میں ایک مٹی کے جار میں 20 صدیوں سے محفوظ کر لیا ہے۔
اور ان سب باتوں کے ثبوت مل جانے کے بعد بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بائبل بدل گئی؟
یہ تو لوگوں کے لیے ایک نیا انکشاف ہے۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ تو پہلے سے ان باتوں سے باخبر ہیں۔
لیکن وہ ان تمام باتوں سے ہمیں کیوں بے خبر رکھتے ہیں؟
کلام کی انتہائی سچی گفتگو آپ سن رہے تھے انکل قاسم اور ان کے ساتھیوں سے، اور جناب اب ہے باری ایک اور روحانی گیت کی۔ आपने एक खूबसूरत और रूहों को ताज़ा करने वाला गीत सुना, अंकल कासिम और उनके साथियों की गुफ्तगू भी सुनी और यकीनन मुंतज़र होंगे आज के सवाल के। तो आज का सवाल है, क्या इंसान के लिए खुदा के कलाम को तब्दील कर देना मुमकिन है? सवाल फिर सुन लीजिए, क्या इंसान के लिए खुदा के कलाम को तब्दील कर देना मुमकिन है? इस सवाल का जवाब भेजने और ख़त लिखने के लिए हमारा एड्रेस लिख लीजिए। इंचार्ज प्रोग्राम फीबा रेडियो, प्रोग्राम अंकल कासिम, पोस्ट बॉक्स नंबर 318 यानी 318 रावलपिंडी, पाकिस्तान। इसी के साथ अपनी मेजबान कैथरीन जावेद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़ निगेबान।